एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास पर, और उतना ही जटिल भी, एवेलिन वॉ का ब्राइट्स हेड रिविजिटेड।
हाँ, एवेलिन वॉ 20वीं सदी के एक बड़े लेखक। उनकी खासियत थी कि उनमें व्यंग्य की धार भी थी और आस्था की एक गहराई भी।
बिल्कुल, शुरू में तो उन्होंने जैसे डिक्लाइन एंड फॉल जैसे नॉवेल्स लिखे, ब्रिटिश हाई क्लास पर तीखे कमेंट्स।
हाँ, कदाक्ष। लेकिन फिर 1930 में उन्होंने कैथोलिक धर्म अपना लिया और ये उनके लिखने के लिए, उनकी जिंदगी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
हाँ, और ब्राइट्स हेड रिविजिटेड जो 1945 में आया, वो इसी कैथोलिक नजरिए की शायद सबसे अहम और सबसे महत्वाकांक्षी रचना है।
बिल्कुल, इसे उन्होंने लिखा भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, और इसमें वो पहले वाला तीखापन, वो व्यंग, वो थोड़ा कम है। इसमें एक उदासी खूबसूरती है, नॉस्टैल्जिया है।
हाँ, खोए हुए वक्त के लिए एक कसक सी है ये उपन्यास। ना, इसमें कई परतें हैं। एक तो ये बिल्डिंग्स रोमैन है, मतलब चार्ल्स राइडर जो एक आर्टिस्ट है उसके बनने की कहानी।
हाँ,
दूसरी तरफ इंग्लैंड का जो पुराना एलीट क्लास था, उनकी वो शानदार हवेलियां, उनके ढलान की कहानी है, एक शोक गीत जैसा।
सही कहा। और सबसे गहरे लेवल पर ये डिवाइन ग्रेस, ईश्वर की कृपा, उसके रहस्यमय तरीकों पर एक सोच है।
बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी की जटिलताओं में थोड़ा उतरें, किरदारों के सफर को समझें, और ये जो मेमोरी, आस्था और प्यार के उलझे हुए धागे हैं, उन्हें थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत का तरीका ही बड़ा दिलचस्प है। एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। कैप्टन चार्ल्स राइडर है, एक थका हुआ सा, जिंदगी से कुछ हद तक ऊबा हुआ फौजी अफसर,
और उसकी बटालियन को एक पुरानी बड़ी सी जागीर में तैनात किया जाता है।
हाँ, और जैसे ही चार्ल्स को उस जगह का नाम पता चलता है, ब्राइट साइड, बस जैसे किसी ने वक्त का पहिया 20 साल पीछे घुमा दिया हो।
सारी भूली हुई यादें ताजा हो जाती हैं, वो यादें जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को शक्ल दी।
एग्जैक्टली, यहीं से उपन्यास अपनी असल यात्रा शुरू करता है, चार्ल्स की यादों के जरिए। ये कहानी है चार्ल्स के फ्लाइट परिवार से जुड़ने की।
फ्लाइट परिवार, अमीर, कैथोलिक और थोड़े विलक्षण किस्म के लोग, ब्राइड्स हेड के मालिक।
हाँ, और ये कनेक्शन चार्ल्स को उसकी सीधी साधी मध्यवर्गीय नास्तिक दुनिया से निकालकर कहीं और ही ले जाता है। अमीरी, शानो शौकत और सबसे बड़ी बात, आस्था की एक ऐसी दुनिया जिससे वो बिल्कुल अनजान था।
और ये कोई सीधी साधी गुड वर्सेस ईविल वाली कहानी नहीं है, है ना?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ असल संघर्ष तो किरदारों के अंदर चल रहा है। इंसानी इच्छाएं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ईश्वर की मर्जी,
दुनियावी खुशियों की चाहत और आस्था की पुकार।
हाँ, वॉल इसे बार बार कहते हैं, ए ट्विच अपॉन द थ्रेड, धागे पर एक खिंचाव, जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो इन किरदारों को खींच रही है अपनी तरफ, भले ही वो भागना चाहें।
तो शुरू में कौन कौन से किरदार सामने आते हैं?
सबसे पहले चार्ल्स राइडर, नौजवान आर्ट स्टूडेंट, खूबसूरती का दीवाना। फिर है लॉर्ड सेबेस्टियन फ्लाइट, फ्लाइट परिवार का छोटा बेटा, बहुत चार्मिंग, थोड़ा सनकी। वो अपना टेडी बेयर एलोइशियस हमेशा साथ रखता है, जैसे बचपन को छोड़ने ही नहीं चाहता।
अच्छा।
और फिर है खुद ब्राइट साइड महल, जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक गुजरते जमाने का, परंपरा का, ब्यूटी का सिंबल है।
और इन सब के ऊपर है फ्लाइट परिवार की कैथोलिक आस्था, जिसका प्रतीक है सेबेस्टियन की माँ, लेडी मार्चमैन।
बिल्कुल, और उपन्यास का सबटाइटल भी देखिए, द सेक्रेड एंड प्रोफेन मेमोरीज, पवित्र और अपवित्र यादें। ये शुरू से ही इशारा है कि कहानी प्यार के दोहरेपन को देखेगी, दुनियावी प्यार भी, रूहानी प्यार भी।
हाँ, और ऑक्सफोर्ड वाले वो शुरू के दिन, इट इन आर्केडिया एगो, एक खोया हुआ सुनहरा दौड़ लगता है। आर्केडिया मतलब एक जन्नत जैसी जगह।
लेकिन उस टाइटल में ही चेतावनी है, मैं यानी मौत आर्केडिया में भी हूं, मतलब खुशी के उन पलों में भी अंत का, क्षय का एहसास छिपा है।
ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चार्ल्स शुरू में किस चीज से ज्यादा आकर्षित होता है, सेबेस्टियन से या उस पूरी दुनिया से जो ब्राइड्स हेड रिप्रेजेंट करता है, वो ब्यूटी, वो लाइफस्टाइल?
मुझे लगता है दोनों ही। सेबेस्टियन एक तरह से दरवाजा खोलता है उस दुनिया का, लेकिन चार्ल्स उस पूरी दुनिया के जादू में, उसके नॉस्टैल्जिया में खो जाता है।
ब्राइड्सहेड उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं, एक सपना बन जाता है।
बिल्कुल, और इसी सपने के बीच उसे आस्था से पहली टक्कर मिलती है। वो देखता है कि कैसे कैथोलिक धर्म सेबेस्टियन को जैसे बांध रहा है, उसे खुशी से दूर कर रहा है। कम से कम चार्ल्स को ऐसा लगता है शुरू में।
यहीं से वो अंदरूनी कश्मकश शुरू होती है जो कहानी को आगे लेकर जाती है।
एग्जैक्टली।
चलिए किरदारों के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। चार्ल्स राइडर, ऑक्सफर्ड का नौजवान आर्ट स्टूडेंट, उसकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सूखी सी है इमोशनली।
हाँ, और वो सुंदरता की तलाश में, शायद प्यार की भी।
और ये सुंदरता उसे मिलती है सेबेस्टियन में, ब्राइड्सहेड में।
लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ बाहर से देखने वाला नहीं रहता, वो फ्लाइट परिवार की जिंदगी में, उनकी उलझनों में शामिल हो जाता है।
शुरू में तो वो उनके धर्म को, खासकर लेडी मार्चमैन के सख्त रवैये को शक से देखता है। उसे लगता है यही सेबेस्टियन के दुख का कारण है।
हाँ, लेकिन उसकी अपनी यात्रा धीरे धीरे बदलती है। ये जैसे अनजाने में ही खूबसूरती की तलाश से आस्था की तरफ बढ़ने लगती है। वो कला में, फिर बाद में जूलिया के साथ प्यार में मायने ढूंढने की कोशिश करता है, पर जवाब कहीं और मिलता है।
पर अंत तक आते आते हमें पता चलता है कि वो खुद कैथोलिक बन गया है। ऑफ स्टेज होता है ये कन्वर्जन, पर हो जाता है।
हाँ,
और सेबेस्टियन फ्लाइट, उसका क्या होता है? वो तो कहानी का दिल था शुरू में।
हाँ, सेबेस्टियन बहुत आकर्षक पर उतना ही ट्रेजिक कैरेक्टर। वो जैसे हमेशा बच्चा बने रहना चाहता है। उसका टेडी बेयर एलोइशियस इसी का प्रतीक है। वो जिम्मेदारी से, बड़े होने से भागना चाहता है, और खास तौर पे अपनी माँ की जो मजहबी पकड़ है उससे। उसे लगता है माँ के धर्म ने, यू नो, ईश्वर के साथ उसके रिश्ते को जहरीला बना दिया है।
लेकिन ये भागना उसे कहाँ ले जाता है?
शराब की गहरी खाई में।
वो खुशी के लिए नहीं पीता।
हाँ,
वो पीता है खुद को तबाह करने के लिए, अंदर के दर्द को सुन्न करने के लिए।
भगोड़ा बन जाता है, आखिर में उत्तरी अफ्रीका के एक मठ में मिलता है, एक लाचार बीमार शख्स की तरह।
लेकिन वह उसकी इस हालत में भी एक तरह की पवित्रता देखते हैं।
हाँ, उसे होली फूल जैसा कुछ कहा गया है, मतलब दुनिया की नजर में हारा हुआ, पर शायद अपने तरीके से ईश्वर के ज्यादा करीब। उसकी पीड़ा में भी एक अजीब सी शांति का आभास है।
सेबेस्टियन की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। उसकी बर्बादी क्या सिर्फ बाहरी दबाव थे या उसकी अपनी कमजोरियां भी थीं?
शायद दोनों का मिला जुला असर था।
और लेडी मार्शमैन, टेरेसा, उन्हें समझना भी आसान नहीं है। चार्ल्स तो शुरू में उन्हें विलेन ही मानता है, ठंडी, कंट्रोल करने वाली, धर्म के नाम पर जोर जबरदस्ती करने वाली।
बिल्कुल, लेडी मार्शमैन बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं। उनकी प्रेरणा क्या है? अपने बच्चों के लिए और अपने ईश्वर के लिए एक बहुत गहरा, अटूट और हाँ, कभी कभी दम घोटने वाला प्यार। वो मानती हैं कि उनके परिवार की आत्माओं को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, चाहे तरीका कोई भी हो। वो अपने पति का छोड़कर जाना, बेटे की शराबखोरी, बेटी का विद्रोह, सब एक अजीब सी शांत पीड़ा और मजबूत इरादे से सहती हैं।
चार्ल्स को भी बाद में ये समझ आता है ना कि वो विलेन नहीं थी।
हाँ, बहुत बाद में।
वो समझता है कि वो उस परिवार में आस्था की वो धुरी थी, वो धागा था जिसने आखिरकार सबको वापस खींच लिया।
अब बात करते हैं जूलिया फ्लाइट की, सेबेस्टियन की बड़ी बहन। पहले हिस्से में वो थोड़ी साइडलाइन पर लगती है, लेकिन दूसरे में एकदम सेंटर स्टेज पर आ जाती है।
हाँ, जूलिया वो भी अपनी आस्था से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन की तरह बचपन में नहीं भागती। वो भागती है मॉडर्न, दुनियादार बनकर।
वो एम्बिशियस है, दुनियावी खुशी चाहती है।
बिल्कुल, इसीलिए वो रेक्स मॉट्रम से शादी करती है, जो अमीर तो है लेकिन अंदर से खोखला है, कनाडाई सोशलाइट। ये शादी जैसे उसके परिवार की आस्था का, उनकी वैल्यूज का मजाक उड़ाना है। और फिर सालों बाद उसकी मुलाकात चार्ल्स से होती है, एक शिप पर।
हाँ, सालों बाद, एक अटलांटिक लाइनर पर, तूफानी मौसम में। दोनों अपनी अपनी शादियों में नाखुश हैं, फंसे हुए हैं,
और उनमें एक जोरदार प्यार हो जाता है।
हाँ, पैशनेट अफेयर। लगता है कि आखिरकार उन्हें वो खुशी मिल गई जिसकी तलाश थी। वो साथ रहने रखते हैं, इंग्लैंड में शादी की प्लानिंग करते हैं।
लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है।
हाँ, जूलिया का आध्यात्मिक संकट। उसका बड़ा भाई ब्राइडी एक सीधी सी बात कहता है, तुम पाप में जी रही हो, और ये बात उसे अंदर तक हिला देती है।
और ये संकट तब और गहरा होता है जब उसके पिता लॉर्ड मार्चमैन मरने के लिए ब्राइड्सहेड लौटते हैं।
लॉर्ड मार्चमैन, एलेक्स, परिवार के सबसे बड़े बागी, अपनी पत्नी, देश, धर्म सब छोड़कर वेनिस में जी रहे थे अपनी प्रेमिका कारा के साथ। बिल्कुल भोग विलास की जिंदगी।
सालों तक बाहर रहे और लौटे भी तो मरने के लिए, वो भी नास्तिक ही मरने के इरादे से।
हाँ, उनका इरादा था कि आखिरी वक्त में चर्च का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन उनकी मौत का सीन वो उपन्यास का क्लाइमैक्स है।
क्या होता है उस सीन में?
आखिरी पलों में जब पादरी उन्हें अंतिम संस्कार दे रहे होते हैं, वो बेहोशी की हालत में होते हैं, लेकिन वो क्रॉस का निशान बनाते हैं। हाँ, ये एक पल जैसे पूरी कहानी का सार है कि ईश्वर की कृपा सबसे पत्थर दिल इंसान तक भी पहुंच सकती है, आखिरी सांस तक।
और इस घटना का जूलिया पर क्या असर होता है?
यही वो पल है जो जूलिया को तोड़ देता है और शायद जोड़ भी देता है। अपने पिता के आखिरी पलों में ईश्वर की ऐसी रहमत देखकर उसे अपने पापों का बोझ साफ महसूस होता है। वो समझ जाती है कि वो चार्ल्स के साथ अपनी खुशी एक और पाप की नींव पर नहीं बना सकती,
और वो चार्ल्स को छोड़ देती है।
हाँ, दुनियावी प्यार के ऊपर ईश्वर को चुनती है।
ये किरदारों और उनके रिश्तों का जाल कितना जटिल है। चार्ल्स का फ्लॉयड परिवार से रिश्ता प्यार के कितने अलग अलग रंग दिखाता है। सेबेस्टियन के साथ वो दोस्ती जिसमें एक रोमानी मासूमियत है, जूलिया के साथ एक मैच्योर दुनियावी प्यार, और फिर धीरे धीरे एक आध्यात्मिक समझ।
बिल्कुल, और ये कहानी कैथोलिक जीवन के तनाव को भी सामने लाती है, अपनी इच्छाएं और धार्मिक फर्ज, इनके बीच की कश्मकश। हर किरदार उस धागे के खिंचाव पर अलग तरह से रिएक्ट करता है।
सेबेस्टियन भागकर खुद को बर्बाद कर लेता है।
जूलिया आखिरकार सरेंडर कर देती है। लॉर्ड मार्शमैन आखिरी पल में लौट आते हैं, और चार्ल्स, जो शुरू में सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर था, वो धीरे धीरे इस पूरे आध्यात्मिक ड्रामे का हिस्सा बन जाता है।
कहानी के अगर मुख्य पड़ावों को देखें तो ऑक्सफोर्ड की वो सुनहली दोस्ती,
हाँ,
फिर वेनिस की यात्रा जहां लॉर्ड मार्चमैन की प्रेमिका कारा चार्ल्स को चेतावनी देती है,
हाँ, एक तरह का फोरशैडोइंग है वो,
फिर सेबेस्टियन का पतन, चार्ल्स से दूरी, आर्केडियन युग का अंत, ये सब पहले हिस्से में।
बिल्कुल। और बुक टू, अ ट्विच अपॉन द थ्रेड, उसमें सालों बाद चार्ल्स और जूलिया का मिलना, उनका प्यार, साथ रहने का फैसला।
इसी बीच सेबेस्टियन की खबरें आती रहती हैं मोरक्को से, चार्ल्स उससे आखिरी बार मिलता भी है।
हाँ, फिर लॉर्ड मार्चमैन की वापसी, उनकी मौत का वो निर्णायक सीन, और जूलिया का चार्ल्स से अलग होना,
और फिर एपिलॉग जो हमें वापस चार्ल्स के प्रेजेंट में ले आता है, दूसरे विश्व युद्ध के समय।
हाँ,
चार्ल्स अब बूढ़ा हो चुका है, ज्यादा समझदार शायद। ब्राइड्सहेड महल युद्ध की वजह से खस्ताहाल है, वो मशहूर फवारा भी सूखा पड़ा है।
लेकिन तभी हमें पता चलता है कि चार्ल्स कैथोलिक बन चुका है।
हाँ, वो महल के छोटे से चैपल में जाता है जिसे फौज ने दोबारा खोल दिया है, और वहां वो देखता है कि वेदी के सामने अभयारण्य दीपक, सैंक्चुरी लैम्प, जल रहा है।
अंधेरे और बर्बादी के बीच आस्था की एक छोटी सी लौ, हाँ, एक उम्मीद का प्रतीक। उसके सारे खोए हुए प्यार, सारी पीड़ा, उसे एक अनचाही मंजिल तक, एक अजीब सी शांति तक ले आई है।
ये कहानी वाकई कहीं गहरे थीम्स को छूती है, सबसे पहले तो मेमोरी और नॉस्टैल्जिया।
बिल्कुल, पूरा नॉवल ही चार्ल्स की यादों का आईना है, और यादें कितनी सब्जेक्टिव होते हैं, कितनी रोमांटिक हो सकती हैं।
बीते हुए वक्त के लिए गहरा अफसोस है इसमें।
हाँ, और दूसरा बड़ा थीम है डिवाइन ग्रेस वर्सेस ह्यूमन विल, ईश्वर की कृपा बनाम इंसानी मर्जी, वो धागे पर खिंचाव, कैसे ईश्वर की कृपा अनजाने, रहस्यमयी और कभी कभी दर्दनाक तरीकों से काम करती है,
उन लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेती है जो उससे दूर भागना चाहते हैं।
एग्जैक्टली, फ्लाइट परिवार के लगभग सभी सदस्यों का आखिरकार आस्था की तरफ लौटना इसी की मिसाल है।
एक और थीम है इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी का पतन और मॉडर्निटी का उदय।
हाँ, ब्राइड्सहेड और फ्लाइट परिवार उस पुरानी दुनिया के प्रतीक हैं जो 20वीं सदी में खत्म हो रही थी, नई दुनिया के खो जाने का मातम मनाते दिखते हैं।
प्यार के अलग अलग रूप भी सेंट्रल हैं, सेक्रेड और प्रोफेन लव।
हाँ, चार्ल्स पहले सेबेस्टियन की खूबसूरती के अपवित्र प्रेम में पड़ता है, फिर जूलिया के सांसारिक, परिपक्व लेकिन फिर भी अपवित्र प्रेम में।
उपन्यास का तर्क ये लगता है कि ये सारे इंसानी प्यार अधूरे हैं, और शायद ईश्वर के प्रेम यानी पवित्र प्रेम तक पहुंचने का एक रास्ता भर है।
कला और सौंदर्य का भी रोल है, चार्ल्स आर्टिस्ट है।
हाँ, उसकी सुंदरता की तलाश ही उसे ब्राइड्सहेड और फिर धीरे धीरे आस्था तक ले जाती है, जैसे कि दुनिया की खूबसूरती हमें बनाने वाले की तरफ इशारा कर सकती है।
और आखिर में पाप, पीड़ा और मुक्ति का विचार। बिल्कुल, ये किरदार परफेक्ट नहीं है, वो गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा, जैसे सेबेस्टियन का दुख या जूलिया का त्याग, वो उन्हें रिडेम्पशन, मुक्ति की तरफ ले जा सकती है।
इन सब थीम्स को वॉ अपनी खास शैली में पेश करते हैं, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, चार्ल्स की आवाज में।
हाँ, तो हम सब कुछ चार्ल्स की नजरों से देखते हैं, उसके प्यार, उसके पूर्वाग्रह, उसकी यादों के रंग में रंगा हुआ।
और कहानी का वो फ्रेम स्ट्रक्चर, वर्तमान अतीत वर्तमान वो भी यादों और खोने के एहसास को गहरा करता है।
बिल्कुल, और सिंबोलिज्म तो भरा पड़ा है।
हाँ, जैसे ब्राइट साइड महल खुद एक प्रतीक है।
हाँ, गुजरते वक्त का, परंपरा का, ब्यूटी का। सेबेस्टियन का टेडी बियर, अलूशियस उसकी बचकानी मासूमियत का,
वो फव्वारा परिवार की विरासत और कैथोलिक पहचान का,
और अंत में वो जलता हुआ दीपक अंधेरे में उम्मीद का प्रतीक, ईश्वर की उपस्थिति का।
वो की भाषा भी बहुत खास है, लिरिकल है, थोड़ी उदास, गहरी रोमानियत लिए हुए।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे चार्ल्स अपनी जवानी को याद करते हुए शब्दों में रंग भर रहा है।
हालांकि बीच बीच में उनका पुराना सटायरिस्ट वाला अंदाज भी दिखता है, खासकर रेक्स मॉन्ट्रम जैसे कैरेक्टर्स पर टिप्पणी करते हुए।
सही कहा, पढ़ने वाले पर इसका असर क्या होता है? एक उदासी तो रहती है, एक नॉस्टैल्जिया, जैसे कोई खूबसूरत सपना देखा हो जो अब टूट गया है। सेबेस्टियन की कहानी दिल दुखाती है, चार्ल्स और जूलिया का अधूरा प्यार कसक छोड़ जाता है।
लेकिन ये सिर्फ दुखद कहानी नहीं है, ये जिंदगी के बड़े सवाल उठाती है। असली खुशी क्या है, कृपा क्या होती है?
हाँ, और आखिर में वो जलता हुआ दीपक, वो एक उम्मीद जगाता है कि चाहे कितनी भी तबाही क्यों ना हो, कुछ पवित्र, कुछ स्थायी हमेशा बाकी रहता है।
तो कह सकते हैं कि ये कहानी मानवीय प्रेम की सीमाओं को, उसकी एक तरह की नाकामी को दिखाती है,
और साथ ही ये भी दिखाती है कि कैसे ईश्वरीय कृपा अनदेखे रास्तों से काम करती है। अक्सर दुख और नुकसान के जरिए ही इंसान को गहरे सत्य और शायद सच्ची शांति तक ले जाती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।